اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں تیرا کیا کام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں تیرا کیا کام ہے، کیا ہے تیری حقیقت جو گم نام ہے، تجھ پہ خود کو چھپانے کا الزام ہے، دنیا بنائی کیوں مقصد بتا، تو نے دنیا بنائی کیوں مقصد بتا، روح اس میں بسائی کیوں مطلب جتا، روح اس میں بسائی کیوں مطلب جتا، تیرے جلوہ سے روشن زمین آسمان، کیوں کسی کو نظر تو نہ آتا یہاں، تیری پردہ نشینی کا انجام ہے، ڈھونڈتا آج بھی تجھ کو انسان ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا مذہب میں ہے تیرے چرچے بیاں، شان میں تیری لکھتے ہیں پرچے وہاں، دھرم مذہب میں ہے تیرے چرچے بیاں، شان میں تیری لکھتے ہیں پرچے وہاں، سب کے بھگوان اپنے اپنے جہاں، نہ سمجھ تجھ کو سمجھے نہ لڑتے یہاں، تو سمجھدار ہو کے بھی انجان ہے بدی کرتے انسان، تو بدنام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں تیرا کیا کام ہے، جنت بنانے کی محنت بھی کی، پھر یہ دوزخ کو لانے کی زحمت کیوں کی، تو نے جنت بنانے کی محنت بھی کی، پھر یہ دوزخ کو لانے کی زحمت کیوں کی، کھیل کیسا جب تھا غضب ڈھا دیا، نیکیوں کو بدی سے ملا جو دیا، لینا کب تک تمہیں سب کا امتحان ہے، اب سبھی کے دلوں میں ارمان ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں تیرا کیا کام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا
نام ہے، اوم شانتی اوم شانتی ओम शांति। राजयोग शिविर के आज दूसरे सत्र में राजयोग का मूल आधार पिता परमात्मा का यथार्थ परिचय। जैसे कल हम सभी ने देखा कि योग माना ही जोड़, संबंध या मिलन। मनुष्य का संबंध जब परमात्मा के साथ जुड़ता है तो उसी को ही सर्वश्रेष्ठ योग, राजयोग कहा जाता है। कि जहां सर्वश्रेष्ठ हस्ती के साथ हमारा संबंध है, सर्वश्रेष्ठ विधि है और जिसमें प्राप्ति भी सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उसको सर्वश्रेष्ठ योग माना गया। परंतु उसके लिए जैसे आत्मा का यथार्थ परिचय देखा, वैसे परमात्मा को भी यथार्थ रूप से जानना आवश्यक है। जहां तक आत्मा का विषय आता है, वहां तक तो फिर भी एक ही मान्यता होती है कि हाँ, ईश्वर है। आत्मा के अस्तित्व को हम सभी जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं। चाहे किसी ने उसको सोल कहा, शक्ति कहा, आत्मा कहा, एनर्जी कहा, हर कोई स्वीकार करता है। परंतु जहां परमात्मा का विषय आता है, वहां आज दुनिया के अंदर अनेक मत मतांतर हो गए हैं। और इसीलिए यही कहा जाता कि जितने मुख उतनी बातें, जितने दिमाग उतने विचार ईश्वर के विषय को लेकर के। कुछ समय पहले एक बहन ने मुझे आकर बताया कि उसका बेटा 17 साल का है और वो अपनी माँ से पूछता है कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है। वो माँ उस बच्चे को समझाने का प्रयत्न करती है कि हिंदू धर्म में सारे भगवान हैं, लेकिन वो बच्चा कहता है नहीं, भगवान तो एक होना चाहिए, इतने सारे भगवान कैसे हो सकते हैं। अब माँ उस बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती और इसीलिए जब भी वो माँ अपने बच्चे से कहती है बेटा चलो मंदिर, कोई स्पेशल ओकेजन होता है या कोई त्योहार होता है तो वो बच्चा मना कर देता है। यही कहते हुए कि मंदिर जाने के बाद आई गेट सो कंफ्यूज्ड, वेयर शुड आई कॉन्सेंट्रेट माई माइंड, मुझे अपने मन को कहां एकाग्र करना है। और इसलिए वो बच्चा मंदिर नहीं जाता है क्योंकि उसको लगता है कि इज वेस्टिंग हिज टाइम। जब मन तो लगता नहीं, किसमें लगाना है यही पता नहीं, तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। वो माँ को बड़ा दुख होता है कि मेरा बेटा नास्तिक होता जा रहा है, और क्योंकि मैं उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रही हूं। वो बच्चा कहता है अगर ये सारे भगवान हैं, तो इन सबका हेड कौन है। एक फैमिली में भी हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो सारे भगवानों का हेड कौन है। वो माँ जवाब ही नहीं दे पाती। ये वो माँ का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ आज की जनरेशन के ये प्रश्न है। हम सभी ने इसीलिए गीत में भी सुना, एक खुदा तू बता दे तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, तू रहता कहाँ है, ये दुनिया बनाने का तेरा मकसद क्या है। कितने सारे प्रश्न थे, शायद आज हर मनुष्य के मन में ये सारे प्रश्न है ईश्वर को लेकर के। एक बार हमने कार्टून देखा और उस कार्टून के अंदर एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम्स आती है हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था प्रकृति परमेश्वर है, नेचर इज गॉड। दूसरी कॉलम में लिखा था आत्मा सुपरमात्मा अहम ब्रह्मास्मि। तीसरी कॉलम में लिखा था ईश्वर है। चौथी कॉलम में लिखा था वो कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापी है, जहां देखू तू ही तू है। पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है। छठी कॉलम में लिखा था वो साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवताएं हो गए सब परमात्मा के रूप है। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था देयर इज नथिंग लाइक गॉड, अगर भगवान सचमुच है तो क्या आप सबूत दे सकते हो। अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सारी कॉलम्स पढ़ने के बाद उसने क्या डिसीशन लिया होगा, व्हाट इज ट्रुथ, सत्य क्या है। जब कहते हैं ईश्वर सत्य है तो सत्य तो एक होना चाहिए, दस बातें हमारे सामने हो और हम कहे सारी ही सत्य है, असंभव। सो व्हाट इज द ट्रुथ, क्या ये सभी सत्य है या इसमें से एक सत्य है, ये सत्य कुछ और है जिसको अभी तक हमने समझा नहीं। क्योंकि ये सारी मतों को अगर देखा जाए तो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। क्या नेचर को परमात्मा कहे या आत्मा को परमात्मा कहे, क्या ब्रह्म को ईश्वर कहे या कण कण में व्यापक है कहे, क्या निराकार को कहे साकार को कहे या है ही नहीं कहे। कितना कंफ्यूजन है। वो कहानी याद आती है कि एक बार पांच सूरदास थे, उन्हें कहा गया हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी को डिस्क्राइब कर दिया। एक के हाथ में पैर आए तो कहा हाथी खंभे जैसा है, एक के हाथ में पीठ आई तो कहा हाथी दीवार जैसा है, एक के हाथ में पूंछ आई तो कहा रस्सी जैसा है, एक के हाथ में सुंड आई तो कहा सांप जैसा है, और एक के हाथ में कान आए तो कहा सूप जैसा है। अब आखिर हाथी कैसा था, क्या ये सभी सत्य है, इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है। यहां तक तो कहानी हम सभी जानते हैं, लेकिन मैं इस कहानी को थोड़ा एक्सटेंड करती हूं कि मान लो कि ये पांचों सूरदासों को कहा जाए कि एक छठा सूरदास दूर बैठा है, आपको उनको जाकर बताना है कि हाथी कैसा है। अब ये पांचों वन बाय वन जाते हैं और कहते हैं, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो लंबा लंबा खंबे जैसा है। थोड़ी देर के बाद दूसरा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सीधा सीधा दीवार जैसा है। थोड़ी देर के बाद तीसरा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो गोल गोल रस्सी जैसा है। थोड़ी देर के बाद चौथा जाकर कहता है कि हाथी एकदम लचीला सांप जैसा है। और पांचवा जाकर कहता है कि हाथी जो है ना, सूप जैसा, पंखे जैसा है। अब पांच की बातें सुनने के बाद ये छठा सूरदास क्या समझेगा कि आखिर हाथी कैसा है। हर कोई आता है, एक अलग बात कहता है, तो आखिर ये प्राणी है कैसा। लेकिन फिर भी वो विश्वास कर लेता है कि पांच ने तो महसूस किया ना, वो झूठ थोड़ी बोलते होंगे, सही होगा, ऐसा ही होगा ये प्राणी, विश्वास कर लेते हैं। अब ये छठे सूरदास को कहा जाता है कि एक सातवां सूरदास और दूर बैठा है, तुमने जो समझा वो उसको जाकर बताना है कि हाथी कैसा है। अब ये छठा सूरदास जाता है सातवें सूरदास के पास और कहता है, देख भाई, मैंने तो महसूस नहीं किया, लेकिन पांच ने जो महसूस किया, उन्होंने जो मुझे बताया, वो मैं तुझे बताता कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है। कभी तो वो खंभे जैसा हो जाता, कभी वो दीवार जैसा हो जाता, कभी वो रस्सी जैसा हो जाता, कभी वो सांप जैसा हो जाता, और कभी वो पंखे जैसा हो जाता। अब सातवां सूरदास जिसका आईक्यू लेवल हाई था, ये छठे सूरदास की बात सुन करके क्या कहेगा? यही कहेगा, हाउ कैन यू बिलीव दिस, कैसे मान लिया? अरे, कोई प्राणी रंग बदल सकता है, पूरा स्केलेटन ही बदल दे, ढांचा ही बदल दे, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल। तो छठा सूरदास क्या कहता है? अरे, पांच ने तो महसूस किया ना, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। तो सातवां सूरदास कहता है, आई कांट बिलीव दिस, मैं ये बात को नहीं मानता हूं। कहीं हमारी हालत भी ऐसी तो नहीं हुई? हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी साधना की शक्ति से ईश्वर के कोई गुणों को महसूस किया और उन्होंने अपनी उस भावना को व्यक्त करने के लिए मनुष्य को सुनाया? किसी ने प्रकृति में कुछ महसूस किया, कहा प्रकृति परमेश्वर है। किसी ने कण कण में कुछ महसूस किया, कहा कण कण में ईश्वर है। वो ऋषि मुनियों ने जब मनुष्य को सुनाया, मनुष्य ने विश्वास कर लिया कि ऋषि मुनियों ने कहा है, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं। अब वो मनुष्य आज की जेनरेशन के लोगों को समझाना चाहता है कि सब ईश्वर है। आज की जेनरेशन का व्यक्ति जिसका आईक्यू लेवल हाई है, वो क्या कहते हैं? हाउ कैन यू बिलीव दिस, ये सारे भगवान कैसे हो सकते हैं? तो मनुष्य क्या कहता है, अरे ऋषि मुनियों ने कहा है, झूठ थोड़ी बोला है, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है छोड़ दो। और इसलिए दिन प्रतिदिन मनुष्य नास्तिक होता जा रहा है, कहते हमें कोई मतलब नहीं, जो भी ईश्वर हो कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए जितना ही ईश्वर को समझने का प्रयत्न किया उतना ही कहीं ईश्वर से दूर तो नहीं हो गए, और आज बहुत दूर हो गए। अब वास्तविकता को जानना जरूरी है, क्योंकि आज की जेनरेशन का बच्चा भी पूछता है आखिर सत्य क्या है। ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारियों ने कहा इसलिए आपको मान लेना है, हम आपको मत नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इतनी मतें हैं, ऑलरेडी आप इतने कंफ्यूज स्टेज में हैं, हम और ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज हम आपको एक कसौटी देंगे जिस पर आपको अपनी मत को कसना होगा और सत्य को समझना होगा कि व्हाट इज ट्रुथ। और ये कसौटी है पांच बातें। पहली बात है कि ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे उसको कहेंगे परमात्मा। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है, गॉड इज वन, सो ही शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल द रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड एज गॉड, उसको कहेंगे परमेश्वर। दूसरा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम के ऊपर कुछ नहीं होता है। और इसीलिए वो सर्वोच्च शक्ति जिसका न कोई माता है न पिता है न गुरु है न शिक्षक है न रक्षक है, वो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक है, जिसके लिए हमने गायन किया त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सर्वोच्च शक्ति, उसके ऊपर कोई नहीं है। तीसरा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोपरे हो, सबसे ऊपर हो, अर्थात मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, जन्म और मृत्यु का चक्र, परमात्मा अजन्मा है, अकाल मूरत है, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर है। जिसने जन्म लिया उसने देह प्राप्त किया, और देह है तो देह के संबंध है, माता पिता भाई बहन सब है। वो अजन्मा है तो अव्यक्त है, न व्यक्त स्वरूप है देह है, न देह के संबंध है, उससे ऊपर है। जिसने देह धारण किया उसने कर्म किया, अब कर्म किया तो उसका फल भी भोगना पड़ता है, तो जो कर्म और कर्म के फल के चक्र में आते हैं उसको तो परमात्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि उसकी महिमा में गाया है अकर्ता भोक्ता, न कर्म में आता है न भोगना भोगता है। और जिसने कर्म किया या तो वो पाप कर्म होगा या पुण्य कर्म होगा, तो पाप और पुण्य के चक्र में भी हम आते हैं, परमात्मा उस चक्र से भी ऊपर है, और पाप और पुण्य के फल स्वरूप या सुख मिलता या दुख मिलता, तो सुख दुख के चक्र में भी हम आते, परमात्मा उससे भी ऊपर है, परे है। तो जो इन सभी चक्रों से पर है उसको कहेंगे परमात्मा। चौथी बात, जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, जिसके पास तीनों कालों का ज्ञान है, त्रिकालदर्शी जिसको कहा, आदि मध्य अंत, जो मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले हैं, त्रिनेत्री, और जिसको त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के भी जो रचयिता है, ये तीन के कर्तव्य भी उसी के साथ लगते हैं। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति, और पांचवा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, उसको कहेंगे परमात्मा। ये पांच बातें हैं कसौटी। अब इस पर अगर एक एक मत को कसकर देखो, सत्य है नहीं तो सत्य को समझने का प्रयत्न करें। पहली बात, जब हम कहते हैं प्रकृति परमेश्वर है, क्या प्रकृति के साथ ये पांचों बातें लगेगी? क्या प्रकृति को सर्वधर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? करेंगे? क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? किसी कवि ने वो बहुत सुंदर गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा, वो चित्रकार कौन है? तो सत्य क्या है? प्रकृति को परमेश्वर कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? आपका विवेक क्या कहता है? क्या कहेंगे? प्रकृति परमेश्वर की रचना है, ये कहना सत्य है। तो इसका मतलब प्रकृति को परमेश्वर मानना ये अज्ञान था, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस, जो हमने मान लिया सत्य तो नहीं है। तो सत्य प्रकृति परमेश्वर की रचना है, ये कहना सत्य है। क्लियर? आगे बढ़े। दूसरी बात कि जब हम कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, तो फिर मंदिरों में जाकर के हमने ये क्यों कहा, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख गनेरे। अब सत्य क्या है? हम ही परमात्मा है या हम उस परमात्मा की संतान है? What is the truth? दोनों बात एक साथ तो नहीं हो सकती। तो इसीलिए सत्य यही है जो अनजानेपन में भी हमने गाया, तुम मात पिता हम बालक तेरे। आज देखो दुनिया के अंदर मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा उसको टाइटल मिलता है। किसी ने पुण्य कर्म किया तो कहेंगे पुण्यात्मा है, किसी ने महान कर्म किया तो कहेंगे महात्मा है, किसी ने धर्म का काम किया तो कहेंगे धर्मात्मा है, किसी ने दिव्य कर्म किया तो कहेंगे देवात्मा है। तो पुण्यात्मा अनेक है, पापात्मा अनेक है, महात्मा अनेक है, धर्मात्मा अनेक है, देवात्मा अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। ग्रामर में परमात्माएं ये शब्द नहीं आता है, गॉड इज वन यही कहा जाता है। और ये सब आत्माएं हैं, परमात्मा किसी को नहीं कहा। पुण्य आत्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहा, महान आत्मा महान परमात्मा नहीं कहा, देव आत्मा देव परमात्मा भी नहीं कहा। ये सब आत्माएं हैं और परमात्मा एक है। कई बार कई लोग एग्जाम्पल देते हैं, अरे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ऐसे एक बड़ा परमात्मा है और उसके टुकड़े टुकड़े होकर के हम इस संसार में आए और अंत में जाकर उसी में विलीन हो जाना है। ये कहां तक सत्य है? सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ये संभव है क्योंकि वो मैटर है, मैटर मैटर में मिल जाता है। लेकिन आत्मा या परमात्मा मैटर नहीं है, इसलिए ये कंपैरिजन ही नहीं हो सकती है। आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, परमात्मा भी एक चैतन्य शक्ति है। जब गीता के दूसरे अध्याय में कहा कि आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है, अजर यानी जर्जर भी नहीं होती है, अमर माना मरती भी नहीं है, अविनाशी यानी जिसके अस्तित्व का विनाश कभी नहीं हो सकता, तो उसके टुकड़े कैसे हो सकते हैं, वो मिल कैसे जाएंगे? जिसका शाश्वत अस्तित्व है, इटर्नल जिसको कहा, वो उस परमात्मा में विलीन कैसे होगा? तो कई बार कई लोग क्या कहते, अरे जैसे पुत्र पिता का अंश है ऐसे आत्मा भी परमात्मा का अंश है। अरे पुत्र पिता का अंश है, अगेन इट इज मैटर, पांच तत्वों का बना हुआ शरीर, तत्व तत्व में मिल जाता है, विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा शक्ति है। एग्जाम्पल देवे तो बराबर का देवे ना, तत्व और शक्ति एनर्जी का कंपैरिजन ही कहां है? विज्ञान के अंदर यही कहा गया है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जब उसका क्रिएशन ही नहीं है, डिस्ट्रक्शन ही नहीं है, उसका अस्तित्व समाप्ति नहीं होता, है सदा के लिए, तो ये कैसे हम एग्जाम्पल देते हैं? तो सत्य क्या है? आत्मा सो परमात्मा कहना सत्य है या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य है? व्हाट इज द ट्रुथ? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? आत्मा परमात्मा की संतान है, उसका अंश नहीं है, वंश है। क्लियर? आगे बढ़े। तीसरी बात, जब हम कहते ब्रह्म ईश्वर है, अर्थात पांच तत्वों की दुनिया से पार एक छठा तत्व है जिसको कहा ब्रह्म महतत्व। अब एक तरफ हम कहते ब्रह्म ईश्वर है और दूसरी ओर हम कहते हैं पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। अब सत्य क्या है? अज्ञानता के कारण हम दो दो बातें करते रहे। प्रकृति परमेश्वर है भी कहा, प्रकृति परमेश्वर की रचना है भी कहा, आत्मा सो परमात्मा है भी कहा, आत्मा परमात्मा की संतान है भी कहा, इसी तरह ब्रह्म ईश्वर है कहा और पार ब्रह्म परमेश्वर है ये भी कहा। अब आपका विवेक क्या कहता है? सत्य किसको कहा जाए? ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है या पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है? पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर है कहना सत्य है। तो ये बात भी क्लियर होगी। आगे बढ़े। चौथी बात, जब हम कहते हैं ईश्वर कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सब में व्यापक है, क्या सचमुच आपका विवेक इस बात को स्वीकार करता है कि कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान है? डू यू बिलीव दिस? आज कोई हमें कह दे फलाना व्यक्ति तो जानवर जैसा है तो भी हमें इंसल्ट महसूस होता है, और हम ईश्वर को कहे वो कूड़े में कचरे में गंद में गटर में सब में है, क्या ये भगवान का अपमान नहीं है? ऊंचे से ऊंची हस्ती, और कहां अज्ञानता के कारण हमने कह दिया। तब मनुष्य क्या कहता है, अरे कण कण में माना हर एक प्राणी मात्र में आत्मा भी और परमात्मा भी बाजू में बैठा है। अब ये कहां तक सत्य है? अगर आत्मा भी है और परमात्मा भी बाजू में बैठा है तो एक व्यक्ति जब दूसरे का खून करता है, गलत काम करता है, तो ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? आपका विवेक क्या कहता है? यही कहेंगे आत्मा का, ऐसा बुरा काम तो परमात्मा करेगा नहीं। तो फिर क्या अंदर बैठा परमात्मा उस आत्मा को बुरे कर्म करने से रोक नहीं सकता है? क्या कहेंगे? सर्वशक्तिमान, और सर्वशक्तिमान की इतनी भी शक्ति न हो कि किसी आत्मा को गलत कर्म करने से रोक सके तो उसका बैठने का कोई मतलब? आज देखो आपके गली में कोई बच्चे खेल रहे हो, और खेल खेल में कुछ आपस में हो गया और झगड़ा करने लग जाए, एक दूसरे को मारपीट करने लग जाए, और आप सामने बैठे हो, आप जाकर के कहेंगे, अरे बेटे क्यों लड़ रहे हो, क्या हुआ? पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? या समझेंगे, अरे उसका कर्म वो जाने, छोड़ो हमें क्या करना है? छुड़ाएंगे या छोड़ देंगे? क्या करेंगे? छुड़ाएंगे। ठीक इसी तरह हम ईश्वर के सभी बच्चे हैं, और अगर बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, और वो भी कभी उसी के नाम पर, और वो कुछ कहे ही नहीं, तो उसके बैठने का कोई मतलब है? सोचने की बात है, कोई मतलब नहीं। आज देखो कोई बात हमें बताता है या पूछता है, हमें मालूम नहीं होता है, तो हम क्या कहते हैं? अरे ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते हो? कहते कि नहीं कहते? फिर ये ऊपर वाला कौन है, और जो सर्वव्यापी कौन है? क्या वो दोनों एक ही है? अगर एक ही है तो हमने अनजानेपन में भी ये क्यों नहीं कहा नीचे वाला जाने, ऊपर वाला जाने क्यों कहा? तो हु इज दिस ऊपर वाला एंड हु इज दिस नीचे वाला? आज भगवत गीता के चौथे अध्याय में जब भगवान ने स्वयं कहा, भगवान वाच, यदा यदा ही धर्मस्य भावार्थ, के जब जब धर्म की ग्लानी होती है तब तब मैं इस संसार में अवतरित होता हूं। अगर वो आते हैं तो नहीं होगा तभी तो आएगा, वो नहीं है तभी तो इतना अधर्म बढ़ा, अगर वो यही है तो उसके होते इतना अधर्म कैसे? कई प्रश्न मन के अंदर खड़े हो जाते हैं। आज देखो प्रकृति के अंदर भी ये विशेषता है कि अग्नि के अंदर लोहा रख दो तो अग्नि का गुण लोहे में आ जाएगा कि लोहा भी एकदम लाल और गर्म हो जाएगा। संग का रंग, ईश्वर सर्व गुणों में अनंत हो और वो हम सब में व्यापक हो, और उसके कोई गुणों का संग का रंग हमें न लगे, ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? क्या उसका संग का रंग नहीं लगा? तो फिर कई लोग हमें पूछते हैं कि क्या फिर शास्त्र में ही तो लिखा है गीता में ही तो लिखा है, मैं हरेक के हृदय में वास करता हूं। क्या शास्त्र गलत है? शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन ये तो हो सकता है कि शास्त्र में जो बात कही गई है उसके भाव को हमने समझा ही ना हो, ये तो हो सकता है। जब परमात्मा ये कहते हैं कि मैं हरेक के हृदय में वास करता हूं का मतलब, जिस तरह आज एक माँ और बच्चा मान लो कहीं विदेश में पढ़ने गया और फोन करता है कि मम्मी क्या आप मुझे याद करते हो, तो माँ क्या कहते हैं, अरे बेटा तू तो मेरे दिल में रहता है, तेरा वास तो मेरे हृदय में है, पल पल तेरे को याद करती हूँ, कहती है कि नहीं। फिजिकली थोड़ी है, भाव ये है तेरी याद मेरे दिल में समाई हुई है। ठीक इसी तरह जब गीता में भगवान ने कहा कि मैं हरेक के हृदय में वास करता हूँ, फिजिकली थोड़ी है, लेकिन हरेक के हृदय में याद किसकी है? उसी की है। तो भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतिक नहीं। आज देखो एक छोटा बच्चा होता है, जब घुटना करना सीखता है, घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है और माँ को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो माँ क्या करती है, उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाकर कहेगी, देख बाहर गया ना कुत्ता उठा के ले जाएगा। अब कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला नहीं है, लेकिन एक डर बिठाया ताकि बच्चा घर के अंदर खेलता रहे और बाहर न चला जाए। वो बच्चा घुटना करते हुए जब दरवाजे तक भी जाता है, बाहर कुत्ता या गाय देखेगा तो क्या करेगा, वापस अंदर आ जाएगा और बड़ा खुश होता है, आई एम सेफ ये व्यक्त करता है। लेकिन वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 8-10 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा, हंसेगा अपनी माँ पर, मेरी माँ भी कितनी भोली है, इतना भी नहीं समझती है कि कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला थोड़ी है, और हंसते हुए बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर कुत्ते के बच्चे को उठाकर घर में ले आएगा, कहेगा लो मैं ही ले आया उसको, ये क्या मुझे ले जाएगा। ठीक इसी तरह मिडिल एज में जब पाप कर्म आरंभ हुआ, आज से 200-300 साल पहले भी लोग पाप करने से डरते थे, क्या कहते थे, अगर किसी ने कोई पाप कर्म करने की प्रेरणा दी तो क्या कहते हैं, अच्छा बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, मना कर देता था, है ना। तो 200-300 साल पूर्व या 500-600 साल पूर्व जब ऋषि मुनियों ने ये चीज देखी कि पाप कर्म आरंभ हो रहे हैं और ये बढ़ेगा अज्ञानता के कारण, तब उन्होंने शास्त्र में ये बात लिखी कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर सब जगह है, उसकी आंखें 1000, वो तुझे देख रहा है। और उस समय इसीलिए मनुष्य डरता था पाप करने से, ईश्वर का डर रहता था। लेकिन आज विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा समझदार हो गया, और इसीलिए जब वो पाप करता है और कोई उसको कहता है, अरे थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, इतना पाप क्यों करता है, तो क्या कहता है, वही डायलॉग, बाल बच्चे वाला, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा, है ना। लेकिन जो पाप करने वाले हैं उससे मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि वाल्मीकि की कहानी तो आप सब जानते हैं कि वाल्मीकि एक बड़ा डाकू था, लोगों को लूटता था। एक बार एक महात्मा जी को पकड़ लिया और कहा जो है दे दो। महात्मा ने उससे पूछा ये क्यों कर रहा है, तो उसने कहा भाई मेरे परिवार को भी मुझे पालना है इसीलिए कर रहा हूँ। तो महात्मा जी ने क्या कहा, अरे जरा परिवार वालों से पूछ के तो आओ कि जब इसका फल भोगने का समय होगा तो क्या ये तेरे पाप में भी भागीदार बनेंगे। कहा क्यों नहीं बनेंगे, जरूर बनेंगे। कहा पूछ के तो आ। ठीक है पूछ के आता हूं। पूछने गया तो माता पिता से पूछा तो माता पिता ने कहा बेटा तू कर्म कर रहा है, तेरे कर्म में हम भागीदार कैसे बनेंगे, अभी हमारी आयु पूरी हो रही है, हम कहाँ चले जाएंगे, तुम कहाँ होगा, तो कैसे तेरे पाप में भागीदार बनेंगे। पत्नी से पूछा तो पत्नी ने भी यही कहा भाई तू पाप कर रहा, हम तेरे पाप में भागीदार क्यों बने। बच्चों से पूछा तो बच्चे कहे कि पिताजी आप तो चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ भोगेंगे, हमें क्या मालूम, हम तो यहाँ रहेंगे, तो आपके पाप के भागीदार हम कैसे बनेंगे। जब उसकी आंखें खुल गई कि अरे ये पाप के भागीदार कोई नहीं बनने वाले हैं, इनके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन इसकी भोगना का समय आएगा तो मुझे अकेले को भोगना पड़ेगा, तो जीवन परिवर्तन हो गया। ठीक इसी तरह आज कई बार मनुष्य भी सोचता है मेरे बच्चे के बच्चे खाएं तब तक का इकट्ठा कर रहा हूं, लेकिन अरे उस बच्चे के बच्चे से पूछो तो सही, जिस पाप की कमाई आप कर रहे हो, जिसके लिए कर रहे, क्या वो आपके पाप कर्म के फल की भोगना में शामिल होंगे, भागीदार बनेंगे, तो क्यों कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हर आत्मा अपने कर्म अनुसार भाग्य लेकर आती है और भाग्य लेकर जाते हैं। आपने जिसके लिए जमा किया बच्चे के बच्चे खाएंगे, लेकिन अगर उसके भाग्य में नहीं है, उसके आपके साथ कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है, आपके जाने के बाद वो पैदा हुए लेकिन आपकी कमाई पर उसका कोई अधिकार नहीं क्योंकि कोई कार्मिक अकाउंट ही नहीं है, तो दूसरे लूट कर ले जाएंगे, उसके भाग्य में तो आएगा नहीं। उसके बाद कितना अफसोस होगा। इसीलिए सर्वव्यापकता की बात ये एक भावनात्मक सत्य है कि जैसे मीराबाई ने कहा एक प्रेम में, ईश्वर के प्यार में आकर के, अरे जहाँ देखूं वहाँ तू ही तू है, क्योंकि उसके मनस पटल पर वह आकृति ऐसी अंकित थी कि जिसको भी वो देखती थी उसमें उसको वही छवि नजर आती थी। तो एक प्रेम भाव है जिसके कारण वो कहती है जहाँ देखूं वहाँ तू ही तू है, कहाँ तू नहीं है। तो ये एक भावना है, सिद्धांतिक नहीं है कि हर एक में ईश्वर बैठा हुआ है, समाया हुआ है, नहीं। अगर ईश्वर सब में होता था तो आज संसार में इतना पाप ही नहीं होता था। लेकिन हाँ सर्वव्यापी है जरूर, कौन, ईश्वर नहीं, शैतान सर्वव्यापी जरूर है। आज हर एक में पांच विकार जरूर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष छल कपट आलस भय स्वार्थ हरेक के अंदर है, तो सर्वव्यापी कौन है। हाथ कंगन को आरसी क्या, जब प्रैक्टिकल दिखाई देता है कि हर एक में कितना गुस्सा है, कितना अभिमान है, एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक कितने लालच है, कितने मोह है, ये सब दिखाई देता है, उसके बावजूद भी हम कहे कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो ये तो वही बात हो गई जो हिरण्यकश्यप ने जब कहा, अरे मैं ही भगवान हूं, तुम्हें और किसी को पूजने की जरूरत नहीं है। तो आज मनुष्य भी जब ये कहने लगा कि मेरे में भी ईश्वर, तुम्हारे में भी ईश्वर, सब में ईश्वर, तो वो शैतान बोल रहा है कि मैं ही ईश्वर हूं, मेरी पूजा कर, और इसलिए मजबूर कर रहा है और दिनों दिन हमें भगवान से दूर कर रहा है। तो इसलिए सर्वव्यापी कौन है? ईश्वर नहीं, शैतान सर्वव्यापी है। आज उसी का बोलबाला चारों ओर नजर आ रहा है। क्लियर हो गई बात? पांचवी बात, जब हम कहते निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है। अब नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है नहीं, कोई चीज नहीं। हवा जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर एक चित्रकार को चित्र निकालना हो और उसमें चक्रवात तूफान दिखाना है तो दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता है। कि चित्र को देखकर हम कहेंगे बड़ी तेज हवा है, चक्रवात है। और शांत प्रकृति दिखानी है कि हवा चली नहीं रही है तो भी दिखा सकते? नहीं दिखा सकते। जरूर दिखा सकते। एकदम शांत प्रकृति, पूरा प्रतिबिंब तालाब के अंदर नजर आता है, कहेंगे एकदम हवा चली नहीं रही है। तो जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र के अंदर ढाल देता है, तो नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है? तो ईश्वर क्या स्वयं रचयिता नाम रूप आकार बिना होगा? तो फिर निराकार किस अर्थ में कहा? निराकार अर्थात जिसकी आकृति साकार सदृश नहीं है, लेकिन उसका अपना आकार तो होगा कि नहीं होगा, वो कौन सा है? तो जिस तरह एक पशु का पिता पशु है, पक्षी का पिता पक्षी है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति पुंज। इसीलिए व्यक्ति शरीर छोड़ते तो ज्योत जलाई जाती है। आत्मा अगर ज्योति पुंज है तो उसके पिता परमात्मा का स्वरूप कैसा होगा? वो भी ज्योति पुंज है, प्रकाश पुंज, अनंत प्रकाशमान, दिव्य तेजोमय स्वरूप, जिसका तेज अर्जुन भी सह नहीं सका और कहा बस करो प्रभु, ये तेज मैं सह नहीं पा रहा हूं, गीता के अंदर कहा। अब उसके साथ वो पांचों बातें लगती है। तो हिंदू धर्म में अगर देखा जाए, जिसको हमने पूजा ज्योतिर्लिंगम के रूप में, ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति की आकृति, ज्योति की पूजा कैसे करें, इसलिए एक आकृति बना दी और उसको कहा ज्योतिर्लिंगम, के पत्थर की पूजा नहीं कर रहे हैं, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, जिसको नाम दिया सदा शिव। सदा शिव यानी जो सदा कल्याण करने वाले, कल्याणकारी है। मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं होते। किसी का नाम होगा शांति भाई, लेकिन जीवन में टेंशन ही टेंशन होगा, शांति नाम की नहीं। किसी का नाम होगा त्रिलोक चंद, और झोपड़ा भी नहीं है और त्रिलोक चंद है। किसी का नाम होगा अमीर चंद, लेकिन होगा फकीर, है ना? तो मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं है, लेकिन परमात्मा का नाम भी गुणवाचक है। कहा सदा शिव यानी जो सदा कल्याण करने वाले हैं, जो सदा सबका तारणहार है। शिव माना शांति, शिव माना परम पवित्र, तो गुणवाचक नाम है। और इसलिए भारत में द्वादश ज्योतिर्लिंगम आज भी महान तीर्थ माने गए हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशा में उसकी पूजा होती है। नॉर्थ में जाओ अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, साउथ में चले जाओ रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती, जिसकी पूजा स्वयं श्री राम ने भी की। ईस्ट में चले जाओ काशी विश्वनाथ के रूप में मिलेगा, तो वेस्ट में चले जाओ सोमनाथ के रूप में मिलेगा। सारे मंदिरों के नाम भी गुणवाचक कर्तव्यवाचक है। भारत से बाहर नेपाल जाओ तो पशुपतिनाथ मिलेगा। तो इसीलिए कहा कि वो परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में, भारत से बाहर भी है। और जितने भी मंदिर बने हैं उन मंदिरों के नाम भी या नाथ या ईश्वर में पूरे होते हैं। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलानाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ या ईश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ये सारे शिव के मंदिर हैं। जो सर्व का नाथ और ईश्वर है वो परमेश्वर है। और इसीलिए उसको कहा गया देवों का भी देव, महादेव, जिसकी पूजा देवी देवताओं ने भी की, जो स्वयं श्री कृष्ण के भी आराध्य रहे, स्वयं श्री राम के भी आराध्य रहे, और जिन देवियों की पूजा करते वो देवियां कौन है, तो कहते शिव शक्ति की आरती जे कोई गाए। शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं, तो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, उसको कहा महादेव। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती जरूर कर देते हैं, जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं। अरे जहां दोनों का नाम अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों का स्वरूप अलग है, एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष, जहां दोनों का कर्तव्य अलग है, एक है भोलानाथ कल्याणकारी और शंकर के लिए कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश प्रलय होता है, तो एक प्रलयनाथ एक भोलानाथ, नाम अलग, आइडेंटिटी अलग, ऑक्यूपेशन अलग, फिर एक कैसे हो सकता है? हम सभी को जब कोई मंत्र देते तो ओम नमः शिवाय का मंत्र देते, ओम नमः शंकराय किसी ने कहा नहीं, कहते एक है तो कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। भारत में शिवरात्रि मनाई जाती है, महाशिवरात्रि कहते हैं, उसको शंकर रात्रि कहा, एक है तो कहना चाहिए। शंकर को भी ध्यान मुद्रा में दिखाते किसका ध्यान करते, और वो भी कैलाश पर जाकर उसने ध्यान किया, तो कैलाश पर जाकर किसका ध्यान किया, तो कहा कैलाश का ध्यान किया। दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा ज्योतिर्लिंगम कैलाश माउंटेन, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकार का है, और जब पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकार का है और वहां बैठकर शंकर ने भी ध्यान किया तो किसका किया? शिव का किया। इसलिए शिव की महिमा गाई जाती है, त्रिदेव जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी क्रिएटर है, त्रिदेव है। और इसीलिए ये त्रिदेव का गायन भी हर धर्म में मिलेगा। इस्लाम धर्म में जिसको कहा गया जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल, और क्रिश्चियन धर्म में कहा गया द थ्री होली स्पिरिट, उसका रचयिता वही है, जीओडी, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो सभी को अगर प्रैक्टिकल देखे तो उसी को आराध्य मान करके चले। ये तो हिंदू धर्म की बात, हिंदू धर्म से और आगे जाए इस्लाम धर्म में, जहां मूर्ति पूजा नहीं है। लेकिन मक्का जब हज यात्रा पर लोग जाते हैं तो वहां काबा का पवित्र पत्थर है, और इस पवित्र पत्थर के पीछे कहानी है। और कहानी ये है कि जब अल्लाह के नाम पर लड़ाई झगड़े होने लगे, मतभेद होने लगा, उस समय ऊपर से ये पत्थर गिरा था, और उस समय एक आकाशवाणी हुई थी, आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इसी स्वरूप में याद करो। और मोहम्मद पैगंबर साहब ने स्वयं उस पत्थर की स्थापना मक्का में की, और इसीलिए हर साल उनकी हज यात्रा निकलती है कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तब जीवन सफल हुआ। हज में हर कोई नहीं जा सकता है, हज में जाने के नियम बहुत कड़े हैं, लेकिन जो हज में जाता है वहां जाकर क्या करता है, अपने पापों का प्रायश्चित करता है, शैतान को पत्थर मारता है, ये पवित्र पत्थर को चूमता है, और अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते हैं जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है। 7 बार परिक्रमा करते हैं, 7 बार परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है और कोई धर्म में नहीं होती है, और इस्लाम धर्म में भी सिर्फ मक्का में होती है और कहीं नहीं होती है, और अंत में अपनी बंदगी में यही कहते हैं हे परवरदिगार, ईश्वर को कहते हैं संबोधित करते हुए, नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है, नूर, नूर माना लाइट, जिसको हमने ज्योतिर्लिंगम कहा, उन्होंने नूर कहा, बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है, तो झगड़ा किस बात का, एक ही तो है। और आगे जाए तो कहा जाता मोसेस जब माउंटेन पर गए, जहां उनको 2 पत्थरों पर 10 कमांडमेंट्स मिले, उस समय उन्होंने अखंड ज्योति का साक्षात्कार किया, जिसने मोसेस को कहा मैं तुझे ये 10 कमांडमेंट्स देता हूं, तुम जाकर के मनुष्य को ये सुनाओ। तब मोसेस पूछता है उस लाइट से कि लोग मुझे पूछेंगे कि किसने दिया, तो आपका नाम क्या है, मैं क्या बताऊं? तो कहा यहोवा, यहोवा माना द सुप्रीम लाइट, उस लाइट ने दिया। इसीलिए जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं उसका बेटा हूं। और इसीलिए जब उसको क्रॉस पर चढ़ा रहे थे, तभी भी अपनी अंतिम प्रार्थना में भगवान से उसने यही कहा कि हे प्रभु आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। ये है प्रभु किसको कहा? आज भी अगर वेटिकन चले जाओ रोम में, जो क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, उस वेटिकन के अंदर आपको जीसस की प्रतिमा नहीं मिलेगी, लेकिन अखंड ज्योति स्वरूप निराकार लाइट का ही प्रतिमा मिलेगी, जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा, बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए गुरु नानक देव ने कहा एक नूर, एक ओमकार, निराकार, निर्वैर, कर्ता पुरुष, वही एक सत्य नाम है, अकाल मूरत है। कितनी सुंदर तरीके से सारी महिमा गाई है, और इसीलिए दिखाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाएं जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं और ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में दिखाते हैं, किसका ध्यान करते हैं, उनसे श्रेष्ठ कौन था? तो कहा सिद्ध शिलापति। सिद्ध शिला माना जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसके ऊपर कोई नहीं है, उसका ध्यान करते। वो कैसा है? तो कहा निराकार है, निरंजन कहते हैं, जिसमें कोई प्रकार का रंज नहीं है, निरंजन। निर्गुण भी कहते हैं, निर्गुण माना मनुष्य तीन गुणों के प्रभाव में आते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, लेकिन परमात्मा ये तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर है, निर्गुण, निर्गुण है। तो निर्गुण, निराकार, निरंजन, तो उसी का ध्यान किया। जैन धर्म में महावीर स्वामी ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, क्योंकि वो भी ध्यान मुद्रा में उस परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा तीन बातें, ज्ञान, दर्शन, चरित्र। ज्ञान को जीवन के अंदर धारण करो, दर्शन शास्त्र में जो बातें लिखी गई है उसको आचरण में ले आओ, और चरित्र को श्रेष्ठ बनाओ, यही बात कही है। और आगे जाएं तो महात्मा बुद्ध ने कभी मूर्ति पूजा की और किसको प्रेरित नहीं किया, लेकिन वो भी ध्यान मुद्रा में किसका ध्यान कर रहे हैं। तो आज भी अगर जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, जो बिल्कुल शिवलिंग आकार का होता है, और उसको कहते हैं चिंकुन शेकी। चिंकुन शेकी का मतलब है जो शांति का दाता है, जिसका ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता, रिलैक्स्ड होता है। इसीलिए वो उसके सामने बैठकर मेडिटेशन करते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने भी कभी ये नहीं कहा मैं भगवान हूं, वो भी ध्यान मुद्रा में। और आगे जाए पारसी धर्म में, तो कहा जाता पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे, और आज भी उनके मंदिर जहां भी स्थापन होते हैं उस मंदिर को कहा जाता है अखंड ज्योति, द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योति निरंतर जलती रहती है, अखंड ज्योति स्वरूप है। तो सर्व धर्म मान्य कौन है? एक ही तो है, जिसको कहा देवों का देव, सभी देवताओं ने भी उसको याद किया, जिसको किसी ने प्रभु कहा, ईश्वर कहा, गॉड कहा, अल्लाह कहा, मालिक कहा। साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक। साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, उसने मनुष्य को यही इशारा दिया सबका मालिक वो है, उसको याद करो, मैं भी उसको याद कर रहा हूं। फिर हम रास्ता भूले कहां से? हम रास्ता कहां से भूल गए? जब सभी ने उसी की ओर इशारा किया, सभी देवताओं ने भी उसको आराध्य माना, तो हम रास्ता कहां से भूल गए? और हम भूल गए इसलिए भटक रहे हैं। तो सर्व धर्म मान्य एक ही है, चाहे किसी ने अलग अलग नाम दिया, लेकिन स्वरूप एक ही है। आज आपको कोई चाचा कहे, मामा कहे, भाई कहे, पिताजी कहे, लेकिन स्वरूप तो वही रहेगा या हर बार बदली हो जाएगा? वही रहेगा ना। वही सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर कोई नहीं है। इसलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभू। शंभू का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हुआ है, जिसको उत्पन्न करने वाली कोई शक्ति नहीं है, कोई मात पिता नहीं है। और जो सभी चक्रों से पर है, न जन्म है, न मृत्यु है, न देह है न देह के संबंध है, न कर्म है न कर्म का फल है, न पाप है न पुण्य है, न सुख है न दुख है, सभी चक्र से वो ऊपर है। पर होते हुए भी, इसलिए गीता में कहा मैं अजन्मा अकाल मूरत हूँ, अव्यक्त स्वरूप हूँ, अकर्ता भोक्ता हूँ, तो सभी चक्रों से वो पर है। पुनर्जन्म रहित हूँ, मैं किसी माँ के गर्भ से इस संसार में नहीं आता हूँ। ये भगवान वह चौथे अध्याय में भगवान ने कहा है अपना परिचय देते हुए। लेकिन पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, इसलिए शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाई जाती है, अर्थात जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। और उसके पास सत्य ज्ञान होने कारण उसको सत्यम कहा। तीन लकीर के बीच में एक आंख होती है, अर्थात मनुष्य आत्मा को ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले हैं त्रिनेत्री, जिससे हमें कल्याण का दर्शन करना है, कल्याणकारी है जो। और उसकी पूजा में तीन पत्र का बैल पत्र चढ़ता है, जो एक डंडी से जुड़ा होना चाहिए, जो अलग अलग नहीं होने चाहिए, अर्थात जो त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, जीओडी गॉड, और जिसकी हर रचना अति सुंदर है, उसको कहा सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सर्वज्ञ, ये तीन की महिमा भी उसी के साथ लगती है। लेकिन हाँ, यहाँ एक प्रश्न जरूर मन में आता है कि यहाँ ब्रह्मा की जगह ये ब्रह्मा दिखा दिया, इसको ब्रह्मा क्यों कहा गया? शास्त्र के अंदर जो ब्रह्मा का चित्र हम देखते हैं कि ब्रह्मा चार मुखधारी दिखाए हैं, सहस्त्र भुजाधारी, और भुजाओं में शास्त्र है, और कमल आसन धारी है। भावार्थ ये कि जब कहा जाता कि परमात्मा को नई सृष्टि रचने का संकल्प आया, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को क्रिएट किया, उत्पन्न किया। और उस समय यह संसार कैसा था? कीचड़ जैसा था। तो कीचड़ में एक कमल खिलाया और उस कमल के ऊपर आसीन, यानी जिसके जीवन को सबसे पहले शुद्ध किया, जो अशुद्ध था उसको शुद्ध किया, ये प्रतीकात्मक है। चार मुखधारी दिखाया और चारों मुख चार दिशा में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चार दिशाएं। सहस्त्र भुजा यानी परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि का सृजन किया, उसमें कई आत्माएं मददगार बन गए जो उसके भुजा के समान। आज कोई हमारा मददगार होता है तो हम क्या कहते? ये तो हमारा राइट हैंड है, उसके बिना काम नहीं होता है, ये हमारे राइट लेफ्ट हैंड है, उसके बिना काम। तो भुजा यानी मददगार की निशानी है। और वो नई सृष्टि की जो सर्जना की, कैसे किया? ज्ञान से। इसीलिए चारों वेद और सारे शास्त्र उनके हाथ में दिखाया, यानी सभी शास्त्रों का निचोड़ सुनाया और नए विश्व की, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना की। और वो ज्ञान खाली हिंदू धर्म वालों के लिए नहीं था, लेकिन सारे संसार के मनुष्यात्मा के लिए था। इसीलिए चार मुख यानी वो ज्ञान प्रवाहित हुआ संसार के चारों दिशाओं में। तो इसीलिए कहा कि जो कार्य परमात्मा इस समय आकर कर रहे हैं, सातवें अध्याय में इसीलिए कहा कि मैं अति साधारण रूप में आता हूँ, जिस कारण मूढ़मति मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते, कोटों में कोई, कोई में भी कोई विरला, मेरे यथार्थ स्वरूप को जान कर, पहचान कर, मेरी शरण को ग्रहण करता है। भगवान आज अगर ब्रह्मा जी के रूप में अवतरित हो जाए चार मुख सहस्त्र भुजा के रूप में, तो लोग उसको कार्य करने देंगे या सेल्फी के लिए जरूर पहुंच जाएंगे? हाँ भाई, मेरी सेल्फी जरूर होनी चाहिए। आज अगर दुनिया में कोई बच्चा दो मुख वाला भी पैदा होता है तो क्या कहते हैं? एबनॉर्मल चाइल्ड। तो ब्रह्मा को चार मुख सहस्त्र भुजा दिखाई तो उसको एबनॉर्मल नहीं कहा? क्यों? क्योंकि ये प्रतीकात्मक है जो इस समय परमात्मा आकर कर रहे हैं। और सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान, इन्फिनिट, अनंत। तो परमात्मा ज्योति बिंदु है और ज्योति बिंदु को मेजर नहीं कर सकते, इसलिए बिंदु को क्या कहते हैं? इन्फिनिट। इन्फिनिट है। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। जैसे किसी व्यक्ति का परिचय लेते हैं तो पांच बातें पूछी जाती, आपका नाम क्या है, फिर आइडेंटिटी के लिए फोटो चाहिए, फिर क्वालिफिकेशन, फिर एड्रेस और प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। ये पांच बातों में संपूर्ण परिचय आ जाता है। तो आज परमात्मा के परिचय में भी हमने ये पांचों बातों को देखा, जिसका नाम है सदाशिव, यहोवा, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, प्रभु, मालिक, जो भी कहो। उसकी आइडेंटिटी क्या है? ज्योति बिंदु स्वरूप, नूर, प्रकाश, लाइट, अखंड ज्योति स्वरूप, निराकार, निरंजन। उसके क्वालिफिकेशन वो पांच बातें, सर्वधर्म मान्य, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ, सर्व गुणों में अनंत। और उसका एड्रेस पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, जो परम धाम में रहता है, मोक्ष धाम, रूहानी दुनिया सचखंड में जो निवास करता है। अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम दिए गए और उनका कर्तव्य है, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन है, यदा यदा ही धर्मस्य। आज संसार में इतना धर्म बढ़ता जा रहा है तो परमात्मा को इस संसार में अवतरित होना ही पड़ता है, अनेक धर्म का नाश और एक धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। अब अगर आज आपका बच्चा आपसे पूछे या आपका पोता आपसे पूछे ये सभी भगवानों का हेड कौन है, तो बता सकेंगे या नहीं बता सकेंगे? बता सकेंगे? क्या अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं है ना? क्लियर? बहुत अच्छा। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम परमात्मा की स्मृति में बैठेंगे और उस परमात्मा को याद करेंगे जो निराकार, सर्वश्रेष्ठ, प्रकाश पुंज और स्वयं को भी प्रकाश पुंज समझते हुए उसको याद करना है, है ना? तो इसीलिए स्वयं को भी आत्म रूप में देख करके अंतर चक्षु से उस परमात्मा को याद करना है, यानी अपने ध्यान को एकाग्र करना है। गीत बजेगा, उसी के भाव में अपने मन को ले चलेंगे। तो कुछ क्षण के लिए